नमस्कार, आज हम एक बेहद खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, अ वर्चुअस वुमन। ये अमेरिकी लेखिका के गिबन्स का 1989 में आया उपन्यास है।
हाँ, और के गिबन्स वो समकालीन दक्षिणी अमेरिकी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज मानी जाती हैं। उनकी कहानियां अक्सर उत्तरी कैरोलिना के ग्रामीण इलाकों में सेट होती हैं।
बिल्कुल, उनकी तुलना विलियम फॉकनर और यूडोरा वेल्टी जैसे बड़े नामों से भी होती हैं, पर उनकी अपनी एक अलग एक खासियत है। भाषा सीधी, सच्ची, थोड़ी रॉ कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक काव्यात्मकता, एक गहराई है।
सही कहा, और उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद ये है कि वो उन किरदारों को आवाज देती हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, खासकर वो औरतें जो खामोशी से जिंदगी की सारी मुश्किलें झेल लेती हैं। हाँ, वो पाठक को सीधे उनके मन की दुनिया में ले जाती हैं। पारिवारिक आघात, गरीबी, मानसिक संघर्ष और इन सब के बीच इंसान की जो जुझारूपन है, वो उनकी कहानियों में बार बार नजर आता है।
वर्चुअस वुमन उनका दूसरा उपन्यास था और इसने उनकी पहचान को और पुख्ता किया। ये कहानी एक रिश्ते की है, लेकिन इसमें वो टिपिकल जुनून वाला रोमांस नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूरत, आपसी सम्मान और एक एक अनकहे गहरे प्यार की कहानी है। तो आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे, इसके किरदारों, इसकी कहानी और इसके गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, कहानी की शुरुआत थोड़ी उदास करने वाली है। रूबी पिटवुड्रो स्टोक्स, महज 45 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो चुकी है।
और अब उनके पति जॉन जैक स्टोक्स, जो उनसे करीब 20 साल बड़े हैं, एक किराए के किसान, वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। घर एकदम सूना, जैक गहरे दुख में है।
हाँ, और यहीं से उपन्यास की बनावट सामने आती है। गिबन्स कहानी को दो अलग अलग आवाजों से कहती हैं, दो नजरियों से।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ तो जैक है, वर्तमान में अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी यादों को टटोल रहा है। वो उस शांत सी औरत को समझने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने प्यार तो किया, पर शायद पूरी तरह कभी समझ नहीं पाया। उसकी आवाज में दुख है, थोड़ी उलझन भी।
और दूसरी आवाज?
दूसरी आवाज रूबी की है, जैसे वो मौत के पार से बोल रही हो। वो अपनी कहानी सुनाती है, उसका मुश्किल बचपन, उसकी पहली शादी जो एक बुरे सपने जैसी थी, उसके अनुभव एक क्रम में।
तो एक वर्तमान का दुख और यादें, और दूसरा अतीत का पूरा ब्यौरा। दिलचस्प।
हाँ, और ये दोनों धागे साथ साथ चलते हैं, जैक का आज, रूबी का कल, और धीरे धीरे उनके 25 साल के रिश्ते की तस्वीर उभरती है। पृष्ठभूमि वही, उत्तरी कैरोलिना का देहात, तंबाकू की खेती वाला इलाका, जिंदगी आसान नहीं है वहां।
तो इसका मतलब कहानी का मुख्य संघर्ष कोई बाहरी घटना नहीं है, वो किरदारों के अंदर है, उनके रिश्ते में है।
बिल्कुल, असली सवाल ये है कि दो इतने अलग लोग, उम्र में, अनुभव में, स्वभाव में, और दोनों ही अपने अतीत से घायल, वो कैसे एक साथ आते हैं, कैसे एक ठीक ठाक सार्थक जिंदगी बनाते हैं।
और ये प्यार की परिभाषा पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? मतलब क्या प्यार हमेशा रोमानी ही होता है, या फिर वो मुश्किलों में साथ निभाने वाली एक जरूरत भरी साझेदारी भी हो सकता है?
हाँ, बिल्कुल, और उपन्यास का शीर्षक भी यही सवाल उठाता है, अ वर्चुअस वुमन, एक गुणी महिला। यहाँ पुण्य या गुण का मतलब पारंपरिक नहीं है।
क्या मतलब है फिर?
रूबी का गुण उसकी उसकी सहन शक्ति में है, उसका लचीलापन, उसकी हिम्मत, जिस तरह वो एक बिखरी हुई मुश्किल जिंदगी में अपने लिए थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी इज्जत बनाने की कोशिश करती है, वही उसका पुण्य है।
अच्छा, मतलब धार्मिकता या सामाजिक मानकों वाला पुण्य नहीं?
नहीं, बल्कि प्रेम करने, वफादार रहने और एक सच्चा इंसानी रिश्ता बनाने की उसकी जो क्षमता है, उसमें है उसका पुण्य, जैसा कि कुछ आलोचक भी कहते हैं।
और जैक, जैक का पुण्य कहाँ है?
शायद उसकी सीधी साधी, लगातार बनी रहने वाली वफादारी में, उसकी देखभाल में। चलिए रूबी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, वो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है।
हाँ, रूबी कैसी है वो?
वो एक ऐसी औरत है जिसके अंदर दर्द भी है और ताकत भी, लेकिन दोनों बहुत खामोशी से छिपे हैं। वो ज्यादा बोलती नहीं, अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती, बहुत संयमित, रिजर्व्ड।
क्यों है वो ऐसी?
जिंदगी की मार ने उसे ऐसा बना दिया है, गरीबी, बुरा बर्ताव, इन सब ने उसे भावनात्मक रूप से बहुत सतर्क बना दिया है। वो अपने आप में सिमटी रहती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि उसे लोगों से ज्यादा चीजों को करीने से रखने में, घर को साफ रखने में सुकून मिलता है। जैसे ये उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक कवच हो।
सफाई एक कवच की तरह।
हाँ, जैसे अपने बिखरे हुए मन और जिंदगी पर काबू पाने का एक तरीका। वैसे वो बुद्धिमान है, चीजों को बारीकी से देखती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा नहीं है, जिंदगी ने उसे प्रैक्टिकल बना दिया है। कुछ स्रोत बताते हैं कि वो असल में बेहतर पृष्ठभूमि से थी, पढ़ी लिखी भी, लेकिन पहली शादी ने उसे मुश्किलों में डाल दिया। उसकी दो बेटियां भी थीं।
तो उसकी जिंदगी का मुख्य मकसद क्या था? वो क्या चाहती थी?
सुरक्षा, स्थिरता। उसका पहला पति जॉन वुड्रो, वो आकर्षक जरूर था, पर शराबी, हिंसक। उसने रूबी की जिंदगी नर्क बना दी थी।
हाओ।
उससे किसी तरह जान छुड़ाने के बाद रूबी बस एक महफूज ठिकाना चाहती थी, जहां रोज का कलेश ना हो, मारपिटाई ना हो।
इसीलिए जब जैक उससे शादी के लिए पूछता है तो वो हाँ कह देती है। ये कोई रोमांटिक फैसला नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैक में एक भला, सीधा साधा आदमी देखती है, एक ऐसा आदमी जो उसे घर दे सकता है। वो प्यार नहीं, एक सुरक्षित साझेदारी ढूंढ रही थी।
उसकी जिंदगी की यात्रा कैसी रही फिर जैक के साथ?
कोई बहुत नाटकीय बदलाव नहीं आया। वो धीरे धीरे जैक के उस खामोश से अपनेपन को स्वीकार करना सीखती है, अपने जख्मों को भरने की कोशिश करती है। और फिर आखिर में जब उसे कैंसर होता है, वो उसकी हिम्मत का जैसे आखिरी इम्तिहान बन जाता है। लेकिन उन्हीं आखिरी दिनों में जैक की देखभाल के बीच उनके रिश्ते में एक नई अनकही सी नरमी आती है, एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है।
तो उसकी जिंदगी तमाम मुश्किलों के बावजूद एक तरह से सफल मानी जा सकती है।
हाँ, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जिंदगी को मायने देती है। वो पुण्यवान बनती है अपने संघर्ष और सहन शक्ति से।
और जैक, वो रूबी से बिल्कुल अलग है ना?
हाँ, बिल्कुल। जैक कहानी का दूसरा सूत्रधार है। रूबी के जाने के बाद उसकी यादों में जी रहा है। वो जमीन से जुड़ा आदमी है, मेहनती किसान।
रूबी से 20 साल बड़ा भी, और भावनाओं के मामले में
बहुत सीधा साधा, मतलब ज्यादा बोलता नहीं, अपने मन की बातें कहना उसे नहीं आता, अक्सर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में संघर्ष करता है।
लेकिन दिल का अच्छा है।
हाँ, ये जरूरी बात है। वो बुनियादी तौर पे भला है, सब्र वाला है, नर्म दिल है। रूबी की जिंदगी में जो हिंसक मर्द थे, उनसे बिल्कुल उलट।
और अकेलापन, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है।
बिल्कुल, अकेलापन जैसे उसकी पहचान है। रूबी से मिलने से पहले भी वो अकेला था। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़ गई थी, और रूबी की मौत के बाद तो वो और भी अकेला हो जाता है।
तो वो रूबी से शादी क्यों करता है?
उसे एक साथी चाहिए था, बस। वो सालों से अकेला था। वो शायद रूबी की खामोशी, उसकी मेहनत को देखता है। वो शायद रूबी के अतीत के दर्द की गहराई को नहीं समझ पाता, पर उसकी अच्छाई को पहचानता है। और बस एक सीधी सी इच्छा है उसके मन में कि वो इस औरत का ख्याल रखे।
उसका अपना सफर कैसा है इस कहानी में?
उसका मुख्य विकास उपन्यास के वर्तमान समय में होता है, जब वो रूबी को याद कर रहा है। रूबी से शादी ने उसे एक अकेले आदमी से एक पति बनाया था, लेकिन असली समझ उसे रूबी की मौत के बाद आती है।
कैसे?
जब वो उनकी साथ बिताई जिंदगी पर सोचता है, तब वो छोटी छोटी बातों के मायने समझने लगता है। रूबी का अचार मुरब्बे बनाना, घर को साफ देखकर उसका चुपचाप खुश होना, अपना दर्द बिना शिकायत के सहना।
हाँ।
तब उसे एहसास होता है कि ये सब उसके चरित्र का, उसके प्यार का इजहार था। वो रूबी को और उनके उस अजीब लेकिन मजबूत रिश्ते को सही मायने में समझ पाता है और उसकी कदर करता है।
तो ये रिश्ता ही कहानी का केंद्र है?
हाँ, बिल्कुल। रूबी और जैक का रिश्ता अधूरा सा, परंपराक नहीं, लेकिन फिर भी गहरा और फंक्शनल।
भावनाओं का लेन देन शायद बराबर का ना हो, पर जरूरत का है।
सही कहा। रूबी को जैक की जरूरत थी सुरक्षा के लिए, एक घर के लिए। जैक को रूबी की जरूरत थी अकेलेपन से बचने के लिए, घर को घर बनाने के लिए।
और प्यार का इजहार वो कामों से होता है, बातों से नहीं।
वही तो। जैक का खेतों में खटना, रूबी का घर को सलीके से रखना, और आखिर में रूबी की बीमारी में जैक का उसकी देखभाल करना, ये सब उनके प्यार जताने के तरीके हैं।
ये दिखाता है कि प्यार खामोशियों में भी पनप सकता है।
हाँ, अगर उसकी बुनियाद रोजमर्रा की आदतों, आपसी इज्जत और एक दूसरे की कमियों को चुपचाप मान लेने पर टिकी हो।
अच्छा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये दो अलग अलग धागे कैसे मिलते हैं?
जैक के वर्तमान से शुरू होकर कहानी हमें रूबी के अतीत में ले जाती है। वो बताती है अपनी पहली शादी के बारे में, गरीबी, अपमान, हिंसा, और फिर वो हिम्मत भरा फैसला जब वो अपने पति को छोड़ देती है। ये उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था।
और फिर वो जैक से मिलती है।
हाँ, जैक जो बरसों से अकेला है, रूबी विधवा, बेटियों के साथ गरीबी से परेशान। उनका मिलना बड़ा प्रैक्टिकल है, कोई ड्रामा नहीं।
जैक सीधे शादी का प्रस्ताव रखता है।
हाँ, वो रूबी में एक मेहनती, सीधी सादी औरत देखता है, और रूबी जैक में एक भला आदमी और एक सुरक्षित छत, दोनों हाँ कह देते हैं।
एक तरह से जरूरत का समझौता।
बिल्कुल। और फिर दो अजनबी एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं। उपन्यास का बड़ा हिस्सा उनके इसी साथ के सालों को दिखाता है, एक शांत रोजमर्रा की जिंदगी
जिसमें रूबी घर संभालती है और जैक खेत।
हाँ, रूबी जैक के उस उपेक्षित से फार्म हाउस को अपनी पूरी लगन से एक साफ सुथरे व्यवस्थित घर में बदल देती है। सफाई, खाना बनाना, कैनिंग, बागबानी, यही उसकी दुनिया, उसका सुकून बन जाता है।
और जैक जमीन पर मेहनत करता है, उनके बीच बातचीत कम होती है।
बहुत कम। और जो होती भी है उसमें अक्सर एक दूसरे को ना समझ पाने की झलक मिलती है। जैक हैरान होता है रूबी की सफाई की धुन और खामोशी से। रूबी को कभी कभी जैक की सादगी या ये बात कि वो उसके अतीत के दर्द को नहीं समझ पाता शायद खलती है।
क्या उनके रिश्ते में कोई उतार चढ़ाव भी आते हैं?
हाँ, कुछ पल ऐसे आते हैं जो उनके बीच की दूरियों को दिखाते हैं। एक बार रूबी का गर्भपात हो जाता है जो उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता है, एक और अनकहा फासला बन जाता है। एक जिक्र आता है बर्न नाम के एक कामगार का, जिससे रूबी की थोड़ी दोस्ती हो जाती है। शायद वो उसे वो बौद्धिक साथ देता है जो जैक नहीं दे सकता। इससे जैक के मन में हल्की सी जलन भी होती है।
तो ये दिखाता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट नहीं था,
किसी बड़े रोमांटिक पल में नहीं है, बल्कि साथ बिताए अनगिनत दिनों के वजन में है, रोजमर्रा की जिंदगी के आराम में है, एक दूसरे की खामोशी का सम्मान करने के अनकहे समझौते में है।
और फिर कहानी आखिर की तरफ बढ़ती है, रूबी की बीमारी।
हाँ, जब रूबी को फेफड़ों के कैंसर का पता चलता है, ये बीमारी उनकी शादी का आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव बन जाती है।
कैसे?
जैसे जैसे रूबी कमजोर पड़ती जाती है, उनकी भूमिकाएं और तीव्र हो जाती हैं। जैक पूरी तरह से उसकी देखभाल में लग जाता है, उसका समर्पित नर्म देखभाल करने वाला बन जाता है।
और इस दौरान उनके बीच की दूरी कम होती है?
हाँ, काफी हद तक। बीमारी की जो सच्चाई है वो उन्हें एक नई कच्ची सी नजदीकी मिले आती है, एक अलग स्तर का जुड़ाव बनता है।
जैक की वो देखभाल, वो शायद रूबी के लिए प्यार का सबसे गहरा अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल। और रूबी भी अपनी उस लाचारी में खुद को उसकी देखभाल के हवाले कर देती है। उसकी मौत एक मुश्किल जिंदगी का शांत गर्मापूर्ण अंत होती है।
और आज जब जैक उन आखिरी दिनों को याद करता है,
हाँ, तो वो यादें सबसे ज्यादा दर्दनाक भी होती हैं और सबसे ज्यादा रोशन भी। उन्हीं यादों से उसे अपने प्यार की, उनके रिश्ते की सच्चाई समझ आती है। वो महसूस करता है कि उनकी जिंदगी जैसी भी थी, साधारण या अधूरी, पर वो सच्ची थी, पूरी थी।
ये कहानी वाकई कई गहरे विषयों को छूती है।
एक तो ये प्यार और साथ की हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं,
हाँ,
उन्हें चुनौती देती है, पूछती है कि क्या प्यार हमेशा वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं,
या वो जरूरत, इज्जत और मुश्किल वक्त में साथ निभाने का नाम भी हो सकता है।
बिल्कुल। एक ऐसी साझेदारी जो रोजमर्रा के कामों और खामोश देखभाल से चलती है।
फिर यादों और दुख का विषय भी बहुत मजबूत है।
हाँ, जैक का पूरा नजरिया ही यादों के जरिए अपनी पत्नी और अपनी शादी को फिर से समझने की कोशिश है, और रूबी की कहानी उसकी अपनी याद है, सीधी और सच्ची।
ये दिखाता है कि अतीत कभी जाता नहीं है, है ना? वो हमारी पहचान बनाता है, हमारे आज को दिशा देता है। रूबी अपने अतीत के जख्मों से कभी पूरी तरह शायद उभर ही नहीं पाती।
और जैक का दुख भी अतीत को फिर से देखने की एक प्रक्रिया है, ताकि वो अपने वर्तमान को समझ सके।
और वो पुण्य वाली बात कि पुण्य को यहाँ पारंपरिक नैतिकता से नहीं, बल्कि जिंदगी को हिम्मत से जीने, दुख सहने और बिखराव में भी व्यवस्था बनाने की कोशिश में देखा गया है।
सही कहा। रूबी की वो सफाई की धुन वो इसी पुण्य का एक प्रतीक बन जाती है, और ये कहानी उस दौर के ग्रामीण जीवन की मुश्किलों को भी बहुत ईमानदारी से दिखाती है।
हाँ, वो कड़ी मेहनत, पैसे की तंगी, अकेलापन, ये सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, ये किरदारों की जिंदगी को गढ़ने वाली ताकतें हैं।
बिल्कुल। गिबन्स इसे बिना किसी रोमानियत के दिखाती हैं। रूबी और जैक की जो व्यवहारिकता है वो इसी माहौल की उपज है।
एक और अहम बात जो मुझे लगी वो है संवाद की कमी, या कह लें कि अपनी बात कह ना पाना और दूसरे की बात समझ ना पाना।
रूबी में वो भरोसा या इच्छा नहीं कि वो अपना दर्द बांटे।
उनका प्यार उन दोनों के बीच की उस बड़ी सी खामोशी में ही पलता है। ये सोचना कितना कितना मार्मिक है कि आप किसी के साथ दशकों गुजार दें और फिर भी उसके मन के कई हिस्से आपके लिए अनजाने रह जाएं।
हाँ, आखिर में बीमारी, मौत और देखभाल का जो चित्रण है वो भी बहुत कच्चा और असली है।
रूबी की बीमारी सारे दिखावे हटा देती है, और जैक का उसकी देखभाल करना उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है।
कथा शैली की बात करें तो ये जो दोहरी आवाज है, बारी बारी से जैक और रूबी का बोलना, ये उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है।
हाँ, इससे हमें एक ही रिश्ते की दो बिल्कुल अलग लेकिन सच्ची तस्वीरें मिलती हैं। जैक की आवाज वर्तमान में है, उलझी हुई, समझने की कोशिश करती हुई। रूबी की आवाज अतीत से आती है, सपाट,
बिना भावुकता के, बस तथ्यों को रखती हुई, नो अधूरे नजरियों को बुनकर एक पूरी बहुस्तरीय तस्वीर बनाती हैं।
और भाषा वो कैसी है?
भाषा में एक गीतात्मक सादगी है। वाक्य सीधे, शक्तिशाली, किरदारों की आवाज के बहुत करीब। लहजा ज्यादातर उदास है, शोक गीत जैसा, लेकिन कहीं भी सेंटिमेंटल नहीं होता। गद्य बहुत ईमानदार है।
हाँ, संयमित।
हाँ।
और प्रतीक भी बहुत गहरे हैं इसमें।
बहुत।
जैसे घर और सफाई, रूबी के लिए सिर्फ जगह और काम नहीं है, वो सुरक्षा, स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है, वो सब जो उसे पहले कभी नहीं मिला।
फर्श को रगड़ना जैसे अतीत की गंदगी को मिटाना।
हाँ बिल्कुल।
और उसका अचार मुरब्बे बनाना, फलों सब्जियों को सहेजना, ये भी जिंदगी की मुश्किलों से कुछ अच्छा, कुछ सहेज कर रखने लायक बनाने का प्रतीक है। पोषण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक।
और खेत, वो जमीन?
वो जमीन उनकी जिंदगी का आधार भी है और उनके संघर्ष का कारण भी। एक मूक गवाह।
कुछ संवाद या पंक्तियां हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, रूबी का वो कहना कि मुझे बस एक साफ फर्श चाहिए था। अगर मेरे पास एक साफ फर्श और एक छत होती जो टपकती ना हो, तो मुझे पता था कि मेरा जीवन अच्छा होगा। ये उसकी पूरी जिंदगी की तलाश को बता देता है।
हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, ये उसकी पूरी महत्वाकांक्षा है। गंदगी और बिखराव से निकलकर व्यवस्था और इज्जत पाना।
बिल्कुल। और जैक का वो सोचना, मुझे हैरत है कि क्या मैंने उसे कभी सच में जाना भी था। ऐसा था जैसे मेरी शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जो मेरे लिए हर दिन एक पहेली थी।
ये रिश्तों की उस सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि हम किसी को कितना भी जान लें, वो फिर भी एक राज बना रहता है, उनके बीच की वो खामोशी।
हाँ, और आखिर में जैक का ये मानना कि हम दो लोग नहीं थे जो मेल खाते थे, हम दो लोग थे जो तब मिले जब हम अकेले थे और हमने एक जीवन बनाया, और ये एक अच्छा जीवन था।
ये जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है, ये रोमानी प्यार के मिथक को तोड़ता है और कहता है कि जरूरत और साथ से बनी साझेदारी भी एक अच्छी सच्ची जिंदगी हो सकती है।
इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मन में एक गहरा शान सा दर्द रह जाता है। किरदारों के अकेलेपन उनके अनकहे दर्द के लिए एक हमदर्दी महसूस होती है।
हाँ, उदासी तो है, लेकिन साथ ही उनकी हिम्मत, उनकी सहन शक्ति की जो खामोश गरिमा है, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देती है।
बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब और खूबसूरती बड़ी बड़ी बातों में नहीं, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में, खामोश देखभाल में, अनकहे प्यार में भी हो सकती है।
और ये कि अच्छा जीवन क्या है, इसकी परिभाषा शायद समाज नहीं, हमें खुद बनानी पड़ती है।
हाँ, और दूसरों के अंदर की उस दुनिया का सम्मान करना सिखाता है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। शायद सच्चा प्यार उस अनजानेपन को स्वीकार करने में ही है।
ये कहानी हमें सहन शक्ति की उस खामोश ताकत की याद दिलाती है जो सबसे साधारण दिखने वाले जीवन में भी मौजूद होती है,
और दिखाती है कि कैसे जरूरतें और हालात से बने रिश्ते भी गहरे, सार्थक और हाँ, पुण्यवान हो सकते हैं। अनिवार्य समापन पंक्ति। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।